नमो सिद्धाणि नमो आयुर्याणि नमो वज्रायाणि नमो लोय सर्वसाधूणि ईशु पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषिं पठनं भवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलि पण्डितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहंत लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवल पण्डितो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलि पण्डितो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूजनीय देवाधिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज गुरु भक्ति का विसर्जन करें। मणिणा इंद्रसुर धैर्य तत् पंच
Thank you.
इच्छा विदंते पंच महागुरुभक्ति का सगो गौ दशालोचे अथ महापाढ़ीहेर संयुक्तान अर्हंतान अर्थ गुण संपन्नानं उद्दलोये मध्यम पैठ्यानं सिद्धानं अर्थ पवयन माउ संयुक्तानं आयरियान आयाराद सुगनानो उदेशानं उवज्जायानं तिर्यन गुण पालनरयानं सद्वसाहूनं निष्कालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख खौ कम्म खौ बोहिलाहु सुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जं वंदितु सर्व सिद्धि दुःमचल मनोवमं गहिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुय केवली भणियम् पांच दृष्टांतों के द्वारा पांच विशेषणों को पुष्ट किया था। शुद्ध ने आत्मा को इन पांच विशेषताओं से युक्त देखता है। तो आत्मदर्शन की प्रक्रिया में जिस दृष्टि के द्वारा आत्मा को अबद्ध अस्पृष्ट देखा जाए, दृष्टांत दिया कि एक दृष्टि से तो वैसा नहीं दिख सकता। कमलिनी का पत्र उदाहरण में ले लीजिए, कमलिनी का पत्ता पानी में है, पानी का जो स्पर्श है उसको देखो तो स्पर्श सही यथार्थ है, पर पत्ते के स्वभाव को देखो तो कमलिनी के पत्र के नीचे और ऊपर दोनों सतहों पर एक अलग प्रकार की प्राकृतिक संरचना होती है। पत्ते के ऊपर कोई कोटिंग जैसी होती है, कोई कहता है कि वो रोम राशि होती है, बहुत बारीक उसमें रुएं होते हैं, और ऐसा भी लगता है कि उसके ऊपर कोई ऐसी एक सतह जैसी है मोम के समान कि जिस पर पानी चिपक ही नहीं सकता। नैनागिरी में जो जल मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो तालाब में जो कमलिनी छोटी छोटी सफेद रंग की खिली हुई है उसको कमलिनी कहो, या रात्रि काल में अगर खिलती हो तो उसको कुमुदिनी कहेंगे, दिन में सूर्य प्रकाश में खिलने वाले को कमलिनी अथवा कमल कहते हैं, बड़े हो तो कमल होते हैं, छोटे आकृति हो तो कमलिनी, और रात्रि में खिलने वाले जो होते हैं बड़े हो तो कुमुद और छोटे हो तो कुमुदिनी। पर इनके पत्तों में कुछ विशेषता ऐसी होती है कि पानी में रहते हुए भी उस पत्ते को पूरा पानी में भी डुबा दिया गया है, तो एक तरफ से देखोगे तो पानी का स्पर्श है, क्योंकि अब पानी का स्पर्श है तभी तो पानी में है, पर दूसरी तरफ से देखोगे तो उस पत्ते की प्रकृति को देखिए, तो उसमें पानी नहीं लगता है, वो पानी में रहता है लेकिन पानी उसमें चिपक नहीं सकता। तो उस स्वभाव से देखने पर समझ में आता है कि कमलिनी के पत्ते के साथ जो पानी का स्पर्श है अथवा बंधन अर्थात उसमें जो चिपका है पानी, वो झूठा है। यथार्थ में न तो पानी उसमें चिपकता है न पानी उसको छूता है, वो उसके बाहर ही रहता है, उसमें लग नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार आत्मा की दशा है, आत्मा को एक दृष्टि से अपन देखते हैं, देखते ही आ रहे हैं, जो भी शरीर के साथ आत्मा का बंधन है, आत्मा के साथ शरीर का बंधन है। फिर अंदर देखो तो ये जो सारा स्पर्श है, कर्म परमाणु जो है आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं, कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणत होकर पुण्य और पाप के रूप में आत्मा के साथ बद्ध हो गई है, तो वो जो बंधे हुए परमाणु हैं वो तो आत्मा को छू रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखने पर तो वैसा लगता है कि छू रहे हैं, लेकिन आत्मा के उस स्वभाव को देखें कि जिस स्वभाव पर दृष्टि डालने पर ये बात समझ में आने लगती है कि अनंतों शरीर और कई कई पुण्य और पाप बंद बांध करके भी ये जीव उन सब से निराला है। कितने स्थान बदल करके चला है। अब जैसे आप अहमदाबाद से शिखर जी चले जाए, तो आप अहमदाबाद में जब तक के हैं तब तक के अहमदाबाद का स्पर्श है आपके साथ, अहमदाबाद का बंधन भी है, लेकिन जब शिखर जी चले जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक नजरिए से वो स्थिति थी कि हम यहाँ बंधे हुए हैं और यहाँ चिपके हुए हैं, पर जब निकल जाते हैं तो फिर लगता है कि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा को उस दूसरी दृष्टि से देखें, आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से, तो फिर आत्म स्वभाव की दृष्टि से देखने पर आत्मा में न तो शरीर का कोई बंधन होता है न कर्मों का कोई बंधन होता है, स्वभाव की दृष्टि से आत्मा बंधन और स्पर्श से रहित है। फिर दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, अनन्य, आत्मा अन्य अन्य रूप नहीं है, अनन्य है। अब इसके लिए दृष्टांत मिट्टी का लिया, चाहे घड़ा हो चाहे खप्पर हो चाहे पैसे डालने वाला गुल्लक हो अथवा रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला चाय का कुल्हड़ हो, कोई भी आकार क्यों ना हो, आकार को देखने पर वो अन्य अन्य रूप दिखाई देता है, लेकिन मिट्टी को देखो तो कुमार जो मिट्टी लाए एक साथ इतनी सारी और उससे जो उसने निर्माण किया, तो आकृतियां अलग अलग बन गई, लेकिन मिट्टी अन्य है क्या? मिट्टी तो अनन्य है, एक ही है। इसी प्रकार आत्मा भी नर नारक आदि विभिन्न पर्यायों में भटकते हुए भी कितने प्रकार के रूप धारण कर लेती है आत्मा, छोटे से छोटा रूप, बड़े से बड़ा रूप, इतना सब होने के बावजूद वो अनन्य एक रूप की आत्मा। तो आकृति की अपेक्षा से अनेक रूपता सही है, लेकिन आत्म स्वभाव को देखो तो वही की देव में भी देख लो आप, वही चेतन, मनुष्य में देखो वही चेतन, निगोद में देखो वही चेतन, सिद्ध अवस्था में देखो वही चेतन, तो अनेक कहाँ हुए? एक ही हुआ ना, अनन्य हुआ। इसके पश्चात कौन सा विशेषण था? नियत। इस शुद्ध ने इन विशेषणों से युक्त आत्मा के दर्शन करा रहे, तो इसमें समुद्र का दृष्टांत लिया कि जैसे समुद्र पूर्णिमा के दिन बढ़ जाता है, अमावस के दिन घट जाता है, ऐसी हानि वृद्धि इसमें सतत होती रहती है। तो हानि वृद्धि को देखो तो फिर वो बड़ा हुआ या घटा हुआ सागर सही में बड़ा हुआ या घटा हुआ है? झूठा नहीं है वो, सच है, बढ़ जाता है और घट जाता है। लेकिन हमेशा सागर सागर रूप रहता है, उसके उस व्यवस्थित सागर स्वभाव को देखो तो फिर चाहे वो बड़ा हो या घटा हो, उस सागर तो नियत रूप है, वही सागर है। इसी प्रकार आत्मा भी छोटी बड़ी अनेक प्रकार की आकृतियों को धारण करता है, उन आकृतियों की अपेक्षा से विचार करो तो आत्मा में हानि वृद्धि है। लेकिन आत्मा के जो प्रदेश है, लोकाकाश के बराबर जो असंख्यात प्रदेश है, वो आत्मा जिस शरीर में चला जाए उसमें आकार फैला ले या घटा ले वो एक अलग बात है, लेकिन उसका जो निजी क्षेत्र है, आत्म प्रदेश, जो चेतन प्रदेश, जीव द्रव्य के जो प्रदेश है, उनको देखो तो फिर नित्य व्यवस्थित रहते हैं वो प्रदेश। छोटे स्थान में समा जाना अलग बात है, बड़े स्थान में समा जाना अलग बात है, लेकिन प्रदेश तो वही के वही, उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये नियत स्वभाव हो गया आत्मा का। उस अपेक्षा से विचार करने पर आत्मा नियत रूप है, अनियत रूप नहीं है। और इसके पश्चात विशेष, विशेष का अर्थ क्या होता है? गुण अथवा पर्याय। तो स्वर्ण का दृष्टांत लिया, क्या दिखा रहा है शुद्ध ने? कि आत्मा अविशेष है, समान है। तो जिस प्रकार स्वर्ण के पास चिकनापन, स्वर्ण जो होता है स्पर्श में रूखा नहीं होता, धार वाला हो सकता है लेकिन रूक्ष स्पर्श वाला नहीं होता, चिकना स्पर्श होता है उसको, मैंने उसमें ऐसे हाथ फिसलते हैं स्वर्ण में, और उसका वर्ण पीत होता है, पीला, और ऐसे हाथ में आप उठाओ, अब इतना छोटा अगर लोहे का गोला आप उठा करके रखोगे हाथ में तो उसका वजन, और उतनी ही आकृति का अगर स्वर्ण का गोला होगा तो उसका वजन, स्वर्ण भारी रहेगा। ये भारीपन भी स्वर्ण की विशेषता है। तो ऐसे स्निग्धता, पीतता, गुरुता आदि पर्याय से अगर स्वर्ण का अनुभव करें, उसकी पहचान करें, तो फिर ये सारी विशेषताएं यथार्थ हैं। लेकिन सिर्फ कांचन स्वभाव को देखें, स्वर्ण स्वर्णत्व को देखें, तो फिर इन सारे भेद प्रभेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो वहां पर पीलापन, हल्का भारीपन, चिकनापन, ये सब कोई कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो तो फिर अविशेष रहता है, समान रहता है। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान दर्शन आदि पर्यायों की अपेक्षा से अनुभव में आने पर विशेष रूप दिखता है, लेकिन जब सिर्फ आत्मा को देखते हैं तो ज्ञान दर्शन आदि सारे विशेष गौण हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तो अविशेष रह जाता है आत्मा। और फिर अंतिम दृष्टांत असंयुक्त, आत्मा असंयुक्त है, इस बात को समझाने के लिए कि जिस प्रकार जल अग्नि की संगति को पाकर गर्म हो जाता है। उस गर्माहट रूप जो पर्याय है, अवस्था है, उससे तन में जो जल है वहां दृष्टि डालने पर, उस अपेक्षा से अनुभव करने पर गर्माहट का संयोग यथार्थ है, यानी उष्णता से वो जल संयुक्त है। लेकिन जल का जो सहज शीतल स्वभाव है उस पर दृष्टि डालो तो जल शीतल ही है, छूने में भले उष्ण हो लेकिन उसकी शीतलता बरकरार है। कितना भी गर्म पानी क्यों ना हो, अग्नि को बुझा डालेगा। ऐसा नहीं कि ठंडा पानी भी अग्नि में पड़े और अग्नि बुझ जाए, क्योंकि अग्नि उष्ण है और अगर पानी भी उष्ण होगा तो अग्नि कैसे बुझेगी, ऐसा नहीं। पानी शीत हो या उष्ण, पानी में जो उष्णता होती है वो पानी का स्वभाव नहीं है, वो संगति से प्राप्त उष्णता है, संयोगी है। लेकिन जल का जो मूल स्वभाव है वो शीतल है, और यदि वो मूल स्वभाव शीतल न हो तो फिर अग्नि कैसे बुझे, गर्म पानी से गर्म अग्नि कैसे शांत हो सकती है। तो कुछ न कुछ पानी के अंदर ऐसा है जो ठंडा है, आ रहा समझ। इसी प्रकार आत्मा में कर्म के कारण उत्पन्न हुआ जो मोह भाव है, उसके साथ आत्मा को तन्मय देखोगे तो फिर आत्मा मोह ही दिखाई देगा, और आत्मा मोह से संयुक्त दृष्टिगोचर होगा। पर चूंकि मोह आत्मा का स्वभाव नहीं है, देखो मोह क्या वस्तु है, उस जल के दृष्टांत की अपेक्षा से विचार करो तो फिर अग्नि के संयोग से आई हुई जल की गर्माहट है, ठीक है ना। उसी प्रकार कर्म के संयोग से आई हुई आत्मा की गर्माहट वो मोह भाव है। लेकिन वो गर्माहट आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो गर्माहट जल का भी स्वभाव नहीं है, वो संयोग से प्राप्त विकार है। पर फिर भी स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, जो नष्ट हो जाए वो स्वभाव नहीं होता, स्वभाव विकृत हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। गुजराती में एक कहावत है, बार गौवे बोली बदले, तरवर बदले शाखा, बाल पढ़ाना केश बदले, लखन न जाए लाखा। बारह गांव के बाद बोलियां बदल जाती हैं। अभी साबरकांठा में आप जाओगे तो केटला आ गया पांच, यहां पांच बोलते ना, वहां पांच। तो बोली बदल जाती है बारह गांव के बाद, और तरुवर बदले शाखा, वृक्षों की शाखाएं भी बदल जाती है। प्रतिवर्ष आप देखिए कुछ नई टहनी आ जाएंगी, और बाल पढ़ाना केश बदले, बचपन के बाल भी बदल जाते हैं। पर लखन में जाए लाख, जो लक्षण होता है, जो स्वभाव होता है, वो लाख प्रयत्न कर लो लेकिन नहीं बदलता। तो यही बात है कि जल का जो स्वभाव है, अग्नि की संगति से जल गर्म जरूर हो जाता है लेकिन उसका शीतल स्वभाव नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार कर्म के संयोग से आत्मा मोही जरूर हो जाता है लेकिन आत्मा का जो शांत स्वभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता। अग्नि को हटा लो, जल अपने आप ठंडा हो जाएगा। मोह को हटा लो, आत्मा अपने आप शांत हो जाए। और शांत इसी वक्त है, शुद्ध ने ये दिखला रहा है कि इस समय शांत है, पर्याय में ना सही है लेकिन स्वभाव में तो है। स्वरूप से इसी समय परमात्मा रूप है, रूप को बदलने में देर लगती है लेकिन स्वरूप तो वही है, अप्पा से परम अप्पा, इसीलिए आत्मा को परमात्मा कहा है। तो इसी तरह स्वयं ज्ञान रूपी बीज स्वभाव वाला जो आत्मा है उसके उस मूल स्वभाव को देखें तो फिर आत्मा में जो मोह प्रकट हुआ है वह मोह भ्रम है, झूठा है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि ये जितनी चर्चा अभी तक आपने सुनी तीन चार दिनों में, इसमें और एकांतवाद में जो आत्मस्वरूप की चर्चाएं आती है, आत्मस्वरूप की चर्चा सब जगह आती है, गीता में भी मिलेगी, उपनिषदों में भी मिलेगी, और बता रहे ज्ञानेश्वरी नामक एक ग्रंथ है, संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित है मराठी भाषा में, उसमें बिल्कुल सिद्ध आत्मा की चर्चा मिलने वाली है। और इस तरह और भी जो दूसरे संप्रदाय के महर्षि हुए हैं, जैसे रमण महर्षि हैं, स्वामी राम हैं, योगानंद, अभी बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं जो आत्मा की चर्चाएं करते हैं। इसमें जो आत्मस्वरूप बतलाया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उस दृष्टि की है, क्योंकि दृष्टि से अगर चूक गया तो फिर सही स्वरूप आपके हाथ नहीं लग सकता। दृष्टि क्या है, यहां ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज झूठी है और ये चीज सच्ची है, यहां एक दृष्टि से बतला रहे हैं कि इस दृष्टि से वो चीज झूठी है, वो चीज अविद्यमान है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आत्मा में जो मोह भाव उत्पन्न हो रहा है उस मोह भाव को झूठा कहा, लेकिन क्या मोह भाव झूठा है, क्या मोह भाव अभाव रूप है, क्या उसका अस्तित्व नहीं है, मोह का बराबर है अस्तित्व, फिर यहां कह रहे हैं कि नहीं है झूठा है, इसका क्या मतलब हुआ? वो किसी अपेक्षा से झूठा है, बस यहां फर्क पड़ जाता है। मैंने एकांतवादी ये कहता है, मैंने एक पक्ष का आग्रह रखने वाला है तो आत्मवादी, मैंने आत्मा का ही वर्णन करने वाला व्यक्ति है, लेकिन एकांतवादी होने के कारण बस वो एक पक्ष का हट ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं आत्मा शुद्ध ही है, और फिर कहता है कि नहीं आत्मा नित्य ही है, कोई कहता है कि आत्मा अनित्य ही है, आत्मा एक रूप ही है, इस प्रकार जो ही लगा दिया उस ही में बात बिगड़ गई। वास्तव में शुद्ध नय क्या दिखलाना चाह रहा है, अशुद्ध नय में जो अशुद्धियां दिख रही है पेनिट्रेट करो उसको, उस अशुद्धि की और गहराई में चले जाओ और अंदर चले जाओ। फोड़े को तब तक कब तक दबाया जाता है, कब तक मवाद निकाली जाती है, जब तक मवाद निकलती है, फिर उसके बाद जब ब्लड आने लग जाता है तब क्या कहता है चिकित्सक, अब साफ हो गया बोले, है ना, तो साफ करने के बाद फिर उसमें वो जात्या विविध प्ररोहति, आत्मानुशासन में एक श्लोक आया था कि जात्याधिक मलम के माध्यम से प्ररोहति, मतलब पूरा घाव भर जाता है। बस इसी तरह वो मवाद निकालने की प्रक्रिया है, अपनी दृष्टि डाली आत्मा के इन पर्यायों पर, तो पर्यायों पर दृष्टि डालने पर बहुत सारी आकुलताएं, बहुत सारी बेचैनियां, बहुत सारे संयोग, बहुत सारे दुख, बहुत सारे विकार, राग द्वेष मोह स्पष्ट दिखाई देंगे। फिर उन सबको पार करके आपको और अंदर जाना है, और अंदर जाने के लिए क्या करोगे कि नहीं ये संयोगी भाव है,
मैं तो संयोग से भी और गहराई में जाना चाहता हूँ, संयोगों से परे मैं आत्मा को देखना चाहता हूँ, तो फिर इन संयोगों को छोड़ते जाओ, ये ऐसे 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 निकलते चले जाएंगे। शरीर और शरीर के आश्रित जितने संबंध हैं वो सब ऐसे छूट जाएंगे पीछे। फिर इसके बाद उसके अंदर जाकर के देखो तो आत्मा के साथ और क्या जुड़ा हुआ है, तो पता चलेगा कि बहुत सारे दूसरे परमाणु भी लगे हैं शरीर से हट करके। ये शरीर के परमाणु तो नौकर्म वर्गणा के परमाणु थे, अब वो कर्मण वर्गणा के भी कई ऐसे परमाणु कर्म बंद करके चिपके हुए हैं, उनके अतिरिक्त विश्रसोपचय रूप में भी कर्मण वर्गणाएं चिपकी हुई है, जो मौका पड़ने पर कर्म रूप परिणत वहीं की वहीं हो जाती है। तो इन सब को पार करते हुए निकल जाओ, नहीं ये सब पर द्रव्य है, ये मेरी आत्मा नहीं है, और इनके निमित्त से आत्मा के संयोग में और इनके योग में इनके मिलन पर एक तीसरी अवस्था भी होती है, वो भी आत्मा के अंदर होती है। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि को अगर इस नीले वस्त्र के ऊपर यहाँ रख दिया जाए तो दूर से वो नील मणि दिखाई देगा, पर स्फटिक मणि नील मणि नहीं है। नीलमणि क्यों दिख रहा है वो, क्योंकि उस स्फटिक में ऐसी क्षमता है कि वो जिस वर्ण की संगति को पकड़ता है वैसे ही वर्ण को अपने अंदर प्रकट करता है। स्फटिक के अंदर जो नीला रंग दिख रहा है वो रंग वस्त्र का रंग नहीं है, उस स्फटिक की क्षमता से उस वस्त्र की संगति में स्फटिक के अंदर नीलापन उत्पन्न हुआ है, पर वो स्फटिक का स्वभाव भी नहीं है। स्फटिक का शुद्ध स्वभाव तो जल जैसा निर्मल रहना है, पर संगति में स्फटिक में दूसरे रंग दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं यानी देखने वाले का भ्रम नहीं होता, उस स्फटिक में ही वैसी पर्याय होती है, उत्पन्न होती है रंगों की संगति में। ठीक इसी प्रकार आत्मा में भी ये अजीव द्रव्य के संयोग से, पुद्गल परमाणुओं के संयोग से, कर्म के उदय से उसी प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो जानना देखना है, पर जानने देखने के साथ साथ वो कभी सुखी होता है, दुखी होता है, प्रसन्न होता है, राग द्वेष करता है, तो ये सब जो परिणतियां होती है वो कर्मों के संयोग से होती है। पर शुद्ध नए क्या दिखला रहे हैं, एक तो क्या है कि निश्चय ने संयोग को ही नहीं देखता, और शुद्ध निश्चय ने संयोग से होने वाला वो भाव जो उस आत्मा में हो रहा है उस भाव को भी नहीं देखता, तो फिर क्या दिखता है। जैसे स्फटिक को अपन देखें तो वो नीला रंग दिख रहा है, लेकिन अपन अपने ज्ञान से देखें, आंख से न देखें, तो ज्ञान से देखेंगे तो पता चलेगा कि स्फटिक तो स्फटिक है। उसी प्रकार आत्मा को अगर उस शुद्ध नय से देखें तो पता चलेगा आत्मा तो निर्मोह है, आत्मा तो निराग है, आत्मा तो द्वेष रहित है, आत्मा तो निर्विकार है। वो शुद्ध न एक दृष्टि है, एक देखने का ढंग है, उस ढंग से देखने पर वैसा दिखता है। पर अगर कोई ऐसा मान ले कि नहीं आत्मा वैसा है ही, अभी भी वैसा ही है और हर प्रकार से वैसा है, तो हर प्रकार से वैसा है ये कहना तो गलत हो जाएगा। यदि हर प्रकार से वैसा है तो फिर शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, फिर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है, साधना करने की क्या आवश्यकता है, सब व्यर्थ है, क्योंकि है ही वैसा आत्मा। जब आत्मा इतना निर्मल है तो फिर कुछ भी नहीं बाकी रह जाता, बचता है कुछ। उतनी निर्मलता अगर आत्मा में इसी वक्त है हर प्रकार से तो अब बचा ही क्या। पर वैसा कहते हुए भी सुख दुख का अनुभव होता है कि नहीं, राग द्वेष का अनुभव होता है कि नहीं, आकुलता होती है कि नहीं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ। कि जो कह रहे हो वैसे नहीं हूं, सिर्फ कहने पर की बात है कि आत्मा शुद्ध निरंजन निर्विकार अलग अद्भुत स्वरूप वाला है, परमात्म रूप है। नहीं, वो दृष्टि है, पर उस दृष्टि से भी आत्मा को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस दृष्टि से देखे बिना तत्व पकड़ में नहीं आता। आचार्य कहते हैं कि यदि व्यवहार को छोड़ दोगे तो सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, और यदि निश्चय को छोड़ दोगे तो वस्तु स्वरूप नहीं मिलने वाला। जय जिणमयम पवज्ज तामा व्यवहार निश्चय मुय एकेण विना छिज्जयी तिथम अन्नेण पुण तच्छन। इस गाथा का अर्थ है कि यदि तू जैन मान्यता को स्वीकार करना चाहता है तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों को मत छोड़ रहा है। व्यवहार को छोड़ने से दान पूजा की परिपाटी नष्ट हो जाएगी, और निश्चय को छोड़ने से आत्म तत्व समाप्त हो जाएगा, और तत्व गया तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ रहा? तत्वार्थ श्रद्धा नहीं तो सम्यक दर्शन। अब इसमें बड़ी सुंदर बात लिखी है, नहि विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमि स्फुटम परितरन्तो केत्य यत्र प्रतिष्ठाम अनुभवतु तमेव द्योतमानं समन्ताय जगदपगत मुहि भूय सम्यक स्वभावम्। ये जैसे स्फटिक था, नीला हो गया था, अब वहां से उठा करके उसको किसी अच्छी जगह रख दो तो नीलापन समाप्त, संगति से आई हुई थी परिणति। अब आचार्य अमृतसिंह स्वामी ने तीन कलशों में बड़ी सुंदर बातें लिखी है कि जहां जाकर अर्थात जिस सिद्ध स्वरूप में जाकर दृष्टि डालने पर ये बद्ध स्पृष्ट आदि सारी अवस्थाएं पकड़ नहीं जमा पाती, अर्थात उस शुद्ध स्वभाव को नहीं पकड़ सकते शरीर और कर्म आदि, और स्फुटम ऊपरी तरंत, वो जैसे पानी है, पानी में लकड़ी का बुरादा डाल दो और खूब जोर से हिला दो, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो सारा बुरादा ऐसे ऊपर आ जाता है, वो पानी के अंतस में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार ये सारे जो भाव आत्मा में जुड़ जुड़ करके उत्पन्न हो रहे हैं, संयोग से हो रहे हैं, ये सब उस आत्मा के चैतन्य स्वभाव को नहीं छू सकते। निगोद में भी आप देखो तो वो ज्ञान उद्घाटित है, नित्य उद्घाटित है, जिस पर कोई आवरण अपना असर नहीं डाल सकता। आचार्य अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बिल्कुल एक आदेश रूप में कह रहे हैं कि हे जगत यानी ये सारे जगत के जितने लोग हैं उन सबसे कह रहे हैं, हे जगत अपगत मोही भूय मोह रहित होकर, हमेशा के लिए मत होना अगर आप तुम्हारी इच्छा न हो तो, लेकिन क्षण भर के लिए मोह रहित होकर, भ्रम रहित होकर, समन्तात् द्योतमानं सब तरफ से प्रकाशमान उस सम्यक चैतन्य स्वभाव का अनुभव अनुभव करो। हे जगत के प्राणियों, जो नहीं सुन रहे उनको मत सुनने दो, जो सुन रहे हैं वो प्राणियों भ्रम रहित होकर उस सम्यक स्वभाव को पहचान लो। एक बार पहचान लो कि क्या चीज है वो अंतरंग का वह परम पारिणामिक भाव, वो शुद्ध चैतन्य स्वभाव, उसको देखो वहां पर ये सब कुछ भी नहीं टिक सकता। और उसको देखने रूप जो अपनी पर्याय होगी, बस उस पर्याय की प्रतीक्षा है मिथ्यात्व को। उस सम्यक स्वभाव को देखने की जो परिणति होगी अपने अंदर क्षण भर के लिए, जैसे ही वो सम्यक स्वभाव परिणाम परम पारिणामिक भाव अपनी दृष्टि का आश्रय बनेगा, अर्थात अपनी दृष्टि जैसे ही उस परम पारिणामिक भाव के ऊपर टिकेगी। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने ही लिखा है कि निराश्रय सन मोहांधकार प्रलीयते, उसी समय उस प्रकाश पर जैसी दृष्टि पड़ी तो अंधेरा जो मिथ्यात्व था वो उसी क्षण प्रलीयते, प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। यानी आत्मा के उस पारिणामिक भाव को पहचान लेने पर मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। अद्भुत बात है। अब कैसे उसको देखें, कैसे उस परम पारिणामिक भाव को पकड़े? पहले तो आपने पारिणामिक भाव के नाम सुने, जीव भव्या भव्यत्वानि च। अब फिर क्या है कि शब्द समझेंगे तभी तो भाव समझेंगे। पारिणामिक भाव, पांच प्रकार के भाव होते हैं जीव में। कौन से पांच? औपिशमिक, शायिक, क्षायोपिशमिक, औदयिक और पारिणामिक। अब इनके अगर भेदों को गिने तो 53 भाव हो जाते हैं। 21 औपशमिक, 9 क्षायिक, नहीं 21 औपशमिक नहीं, 21 औदयिक, औदयिक भाव 21, औपशमिक भाव 2, क्षायिक भाव 9, कौन सा बचा? क्षायोपिशमिक, क्षायोपशमिक भाव 18 और पारिणामिक भाव 3। ऐसे 53 जीव के विशेष भाव होते हैं। अब इनमें एक पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जिसको न तो कर्म के उदय से कोई लेना देना है, न कर्म के उपशम से कोई लेना देना है, न कर्म के क्षय से उसका कोई संबंध है और न कर्म के क्षयोपशम से उसका कोई संबंध है। अर्थात पारिणामिक भाव उस भाव को कहते हैं जो कर्म निरपेक्ष होता है। तो आत्मा के पारिणामिक भाव 3 है। कौन से? जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। अब इनमें भी भव्यत्व और अभव्यत्व ये दोनों भाव एक जीव में नहीं होते, दो में से एक होगा किसी भी जीव में। जिस जीव में अभव्यत्व भाव होता है वो अभव्य जीव कहलाता है, और जिसमें भव्यत्व होता है वो भव्य जीव कहलाता है। तो ये एक पारिणामिक भाव हो गया। और फिर जीवत्व नाम का जो पारिणामिक भाव है वो 2 प्रकार का है। एक पर्यायार्थिक मय की अपेक्षा से ग्रहण किया जाने वाला 10 प्राण रूप जीवत्व। संसार दशा में ये जीव नवीन नवीन शरीर धारण करता है तो 6 पर्याप्ति और 10 प्राणों की स्थिति बनाता है। कौन से 10 प्राण? 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण मन वचन काय, और श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण होते हैं। तो ये जो 10 प्राण रूप जीवत्व है ये पर्याय नय के आश्रित है। और एक जीवत्व वो है जो द्रव्याश्रित है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। उस जीवत्व को परम पारिणामिक भाव कहते हैं। वो निर्विकार सिद्ध समान आत्मा के अंदर विद्यमान जीवत्व जो भाव है, जीवत्व। देखो सिद्ध भगवान में जो ज्ञान है और निगोद के जीव में जो ज्ञान है जमीन आसमान का अंतर। ज्ञान की पर्याय वहां पर केवल ज्ञान है और यहां पर मति और श्रुत ज्ञान है, और वो भी कुमति और कुश्रुत है निगोद में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। लेकिन उस ज्ञान को अगर आप अंतरंग दृष्टि से देखें तो जानन 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 रूप जो परिणति हो रही है ज्ञान में, वो जानने की प्रक्रिया वहां भी है और यहां भी है। जानना जानना समान, इसको ये कह सकते हैं अपन कि ज्ञान पना मति ज्ञान में भी है, कुमति ज्ञान में भी है और केवल ज्ञान में भी है। तो उसके पर्याय को गौण करके अगर अपन सिर्फ जानन पने को देखें तो फिर केवल ज्ञान और निगोद के ज्ञान में भी समानता मिलेगी, नहीं मिलेगी? बिल्कुल समानता मिलेगी। जैसे मनुष्य चाहे अफ्रीका में पैदा हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, या कहीं एलियन बाहर अंतरिक्ष में किसी दूसरे ग्रह उपग्रह में कहीं भी हो, लेकिन मनुष्यत्व की अपेक्षा से विचार करने पर सब समान है। यानी द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सब एक रूप है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो अनेक रूप। बस वो जो शुद्ध जीवत्व है उस पर जब लक्ष्य करते हैं, उसी को तो स्वभाव कहा, और उसी की चर्चा में तो आचार्य महाराज ने ये कहा कि समुद्र की तरंगों को देखो या फिर हानि वृद्धि को देखो तो फिर उसमें भेद है, नियतपना नहीं है। लेकिन अगर समुद्र को देखो, समुद्र तो समुद्र ही, वही अरब महासागर, वही हिंद महासागर, वही अटलांटिक, वही प्रशांत महासागर, वो तो वही का वही। इसी प्रकार आत्मा को देखो तो आत्मा आत्मा ही है, ऐसी बात निकलती। तो अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इसकी विधि। भूतम भांतम भूतमेव रभसान निर्भिद्य बंधन सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयत् व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवं नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत। ये कलश हमें प्रिय है, समयसार कलश ग्रंथ में, इसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि विवेकी मनुष्य जिसके पास प्रज्ञा बुद्धि है, प्रज्ञा किसको कहते हैं? मिले हुए में भी पृथककरण करके जान लेने की क्षमता, प्रज्ञा विवेक बुद्धि जिसको कहते हैं। जैसे भोजन करते, सबके पास होता है विवेक तो सामान्यतः, भोजन करते समय अगर किसी से पूछा जाए कि चलो आँख बंद करो, आँख बंद कर ली, अब उसके मुंह में एक चम्मच कोई सब्जी डाली, अब पूछना कि बताओ कौन सी सब्जी, तो वो क्षण मात्र में बतला देता है कद्दू। फिर उससे पूछने कि देखे बिना कैसे बताया, कितने मसाले डाले थे उसमें, और भी उसमें कई चीजें थी, लेकिन फिर तुमने ये कैसे बताया कि कद्दू, तो उत्तर देता है कि ये तो कोई भी बता सकता है। अगर जीभ पर कोई चीज आ जाए तो फिर वो पहचान करने की क्षमता अपने पास है कि क्या है क्या नहीं है। बस इसी प्रकार अपने पास जो प्रज्ञा है, जो विवेक है, उस विवेक के अंदर ये क्षमता है कि मिश्रण में से भी किसी एक अवयव को पृथक जान लेता है। पृथक कर लेना अलग बात है और पृथक जान लेना अलग बात है। तो आचार्य महाराज अभी क्या कह रहे हैं कि पृथक करने की बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो जान तो लो कि पृथक हो, फिर बाद में उसको पृथक करने की प्रक्रिया करना तो अच्छे से करोगे तुम, और जाने बिना करोगे अगर पृथक करने की कोशिश तो फिर किसको किससे पृथक करना, यही भ्रम रहेगा। मोक्षाधिकार में आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि तू मोक्ष जाना चाहता है, तू मोक्ष चाहता है किसका बता, मोक्ष चाहता है ना, किसका मोक्ष चाहता है, वो चीज पकड़ने की है। तो ये पहली सीढ़ी है विवेचन, विवेचन यानी पृथक्करण, व्याख्यान रूप विवेचन अलग होता है, ये विवेचन, इसको विवेक बुद्धि से पृथक जाने। कैसे? तो आचार्य कहते हैं भूतम, भूतकाल का जितना भी बंधन है उसको, भांतम वर्तमान का जितना बंधन है उसको, अभूतम जो अभूत यानी भविष्य में होने वाला है उस समूचे बंधन को अपनी विवेक बुद्धि से, हे विवेकी प्राणी तू बलात् खंडित कर दे, उस बंधन को ब्लास्ट कर दे, नष्ट कर डाल। है बंधन इस समय, है बंधन तेरे साथ, बहुत सारा बंधन है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं उस पर क्षण भर के लिए ध्यान देकर अपनी विवेक बुद्धि से उस बंधन का भेदन कर डाल, उस बंधन में मत अटक, उसको फोड़ डाल, और फोड़ कर और अंदर जाकर देख क्या दिखाई देता है। भ्रम को तोड़ डाल, बंधन को फोड़ डाल और अंदर देख क्या दिखता है। आचार्य कहते हैं कि कोपी, कोई भी ये काम करेगा तो अहो अद्भुत बात हो जाएगी। इतना काम अगर कोई भी कर ले तो बड़ी अद्भुत स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी? आत्मानुभव के ही द्वारा जिसकी महिमा को पहचाना जा सकता है, ऐसा आत्मा इतना कर लेने के बाद इस प्रकार दृष्टिगोचर होगा, इस प्रकार समझ में आ जाएगा, इतना इतना स्पष्ट उसका परिचय होगा कि उस समय आपको ऐसा लगेगा कि ध्रुवम व्यक्त आस्ते, ये तो हमेशा ही प्रकट बैठा हुआ परमात्मा है, मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतरंग में प्रकट विराजमान भगवान, स्वयं शाश्वत कर्म कलंक पंस विकल देव नित्यम व्यक्त द्रोमास्ते। यानी अपने भूत भविष्य वर्तमान संबंधी सब बंधनों को फोड़कर, मोह को तोड़कर अगर अंदर देखो अपनी आत्मा में तो सदा प्रकट अविनाशी शाश्वत भगवान आत्मा इसी वक्त विराजमान है। भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जैसे समवसरण में तीर्थंकर जब विराजमान होते हैं तो आठ भूमियां होती हैं, उन आठ भूमियों में एक से बढ़कर एक अद्भुत आकर्षण है। वो 20,000 सीढ़ियां चढ़कर जब वहां अंदर भगवान की सभा में पहुंचते हैं तब जाकर के भगवान के साक्षात दर्शन मिलते हैं। पर उतनी सीढ़ियों को पार करना और उतने आकर्षणों को छोड़ना कठिन होता है, इसलिए सभा भूमि में कम लोग मिलेंगे। बाकी बाहर घूमने वाले बाग बगीचों में, नाट्यशालाओं में, संगीत गृहों में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। समवसरण में पूछेंगे कि कहाँ गए थे, समवसरण गए थे, समवसरण गए थे लेकिन भगवान के दर्शन किए बिना आए वापस। बस इसी प्रकार यहाँ पर ये अंदर जो परमात्मा विराजमान है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो अंदर इसी वक्त परमात्मा है, उनके दर्शन कैसे प्राप्त करें? तो तीनों काल के बंधनों को खंडित कर डालो, भ्रम को दूर हटा दो, मत सुनो उस संगीत की ध्वनि, कोई मतलब नहीं है, एकदम सब तरफ से ध्यान हटाकर बिल्कुल चले जाओ, तुम पूरा शून्य शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बंधन को हटा दिया, तो क्या बचा बताओ? न शरीर बचा, न कर्म बचे, न और कोई संबंध बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा?
भगवान आत्मा
बचा क्या? वो दृष्टि उस कारीगर के पास होती है जो पत्थर में पहले भगवान के दर्शन करता है और बाद में कचरा साफ करता है, फिर वो तराशता नहीं पत्थर को। किसी कुशल कारीगर से आप पूछेंगे कि आपने क्या सुंदर मूर्ति बनाई है, वो क्या उत्तर देगा? कि मैंने बनाई नहीं मूर्ति, कोई नहीं बना सकता, भगवान को कौन बना सकता है? मैंने तो भगवान को देखा, हाँ ये मैं मानता हूं कि वो वाली आंख मेरे पास है, वो सबके पास नहीं है। उन आंखों से या उस आंख से, इन आंखों से नहीं, उस तीसरी आंख से मैंने उसमें पत्थर में देख लिया था भगवान को, और फिर सिर्फ ऊपर से दूसरा जो कचरा था, जो एक्स्ट्रा था, जो भगवान नहीं था, जो हिस्सा, उसको मैंने अलग कर लिया। बस इसी प्रकार अपनी आत्मा को एक बार देख लो, वो परमात्मा इसी समय है अपने पास, और बस कारीगर बन जाओ, और कारीगर बन करके फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, हथौड़ी, छेनी और सब चीजें हैं, इनको लेकर के बैठ जाओ, और जब पूरा कचरा साफ हो जाएगा, कुछ भावों में, इस भाव में तो मुश्किल लगता है, कुछ भावों में जब पूरा कचरा साफ हो जाएगा, तो फिर वो जो अंदर देखा था प्रथम क्षण में, जिस क्षण वो सम्यक दृष्टि बना था उसको देखकर, वो देखने का क्षण और सम्यक दृष्टि बनने का क्षण अलग अलग नहीं है, एक ही क्षण है। तो बस परमात्म दर्शन से सम्यक दृष्टि बना था, जिन दर्शन करके उसने इतना पुण्य कमाया और फिर इतनी जिनवाणी को प्राप्त किया कि उससे यहां तक पहुंचने का उसको संकेत मिल गया, तब इसके बाद आगे का काम तो उसको खुद करना पड़ा। खुद कैसे किया? उसने बैठ करके एक बार अंतरंग में देखा, सब हटा दिए, तीनों काल के बंधनों को हटा दिया, बंधन हट गया तो फिर बंधन के निमित्त से होने वाली जितनी परिणतियां थी उनको भी हटा दिया क्षण भर के लिए, और फिर देखा अंदर, तो देव स्वयं शाश्वत व्यक्त हो, प्रकट है, छुपे हुए नहीं है भगवान, अनावृत है। आवरण तो अपन ने अपनी आंखों पर भ्रम का डाल रखा है, मोह का, उसको हटा के देखो, उस पर्दे को क्या दिख रहा है? भगवान आत्मा। तो इस तरह आत्मदर्शन की चर्चा यहाँ 14वीं गाथा की कलशों तक पहुंच गई। अब इसके पश्चात आचार्य कहते हैं कि जिसने ये काम कर लिया उसने संपूर्ण द्वादशांग को समझ लिया, मतलब अब वो अगर 12 अंगों को पढ़ करके ये काम करे तो भी वही बात है, और अगर क्षण भर के लिए अंतर्मुख होकर के ये काम कर ले तो भी वही बात है, बस करना ये काम जरूरी है, इसके बिना कोई चारा नहीं। जावाणी के ज्ञान ते झेलो कालो सुवाणी मस्तक चढ़ो और देख मधु या इसके बाद परीक्षाएं भी बहुत होती हैं, इसकी पहचान हो गई, फिर वो पुराने संस्कार आपके ऊपर हावी होंगे, फिर राग द्वेष और कलुषता उत्पन्न होगी, लेकिन जब भगवान को एक बार पहचान लिया आपने तो उस भगवान का अपमान मत करना, यानी फिर से उस छोटे से मैं में उस भगवान को कैद मत करना, उस अहम,
புள்ளிப்படம் புள்ளிப்படம்